चार्जिंग लगा रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया मेरे बाद सब लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो मेरा सौभाग्य है आप लोग का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन परीक्षा यह है कि माइक नहीं चल रहा है क्योंकि थोड़ा गला उधर ज़्यादा बोलना हो जाता है, इसलिए थोड़ा गला को प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं है, आज हम भगवद्गीता के अभी भगवद्गीता आप लोगों ने सुना, सब लोगों ने सुना भगवद्गीता, यहाँ पे सब ने सुना, 3 दिन का गीता क्रैश कोर्स कंप्लीट तो नहीं हुआ रहेगा, लेकिन संक्षेप में आप लोगों ने सबने गीता का श्रवण किया। हाँ, तो एक गीता है जो हम सभी भक्तों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है। ये केवल भक्तों के नहीं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म के या हिंदू लोग के लिए ये गीता है ना, ये सारे लोग के लिए गीता है, सारे लोग के लिए गीता है। ऐसा ये किसी धर्म और विशेष के ऊपर निर्धारित है गीता नहीं है। भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया, ये जितने भी जीव है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए प्रदान किया। ऐसा नहीं कि भगवान ने वहाँ पे बोला क्या ऐसा कि केवल हिंदू के लिए है या इनके लिए, एक्चुअली एक ही धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन बाद में फिर बहुत सारे धर्म को बना दिया गया। लेकिन भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया है सारे जीव के लिए दिया हुआ है, सबके लिए दिया हुआ है। ये मैनुअल बुक है मनुष्य के जीवन का, मैनुअल है बुक है ना। कोई सामान खरीदते हैं हम जब ना, तो कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी कुकर भी खरीदते हैं, तो वो सब एक मैनुअल मिलता है कि कैसे चलाना है इसको, उसके अनुसार अगर नहीं चलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। उसी प्रकार से जो शरीर हमारा मिला है ना, यह भी शरीर जो है ना यंत्र है। भगवान भगवद्गीता में ही कहते हैं कि यंत्रा रुढ़ानिमाया, ये शरीर जो है यंत्र है, इसको चलाना है तो इसके लिए भगवान ने भगवद्गीता का उपदेश दिया, भगवद्गीता का ज्ञान दिया। उसके अनुरूप ही, उसके अनुसार ही अगर हम चलाएंगे तब ये बराबर चलेगा, नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये बेस है भगवद गीता। तो आइए हम भगवद गीता के एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक। मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि क्या बताऊं आप सब लोग को, तो मैं सोच रहा था कि चलिए एक जो भक्तों के जीवन में एक सबसे बड़ी चिंता, भक्त बन गए लेकिन एक चिंता है, उस चिंता को मैं बताता हूँ। तो चलिए आज मैं उस चिंता को मुक्त करता हूँ। मैं तो यहाँ आने वाला नहीं हूँ बार बार, तो आया हूँ तो ये सेवा करके जाऊँ कि एक चिंता है जो भक्तों के जीवन में, उस चिंता को मुक्त करते हैं। चलिए आज मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा। तो भगवद्गीता का ये जो 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है, हम उसको थोड़ा उच्चारण करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमावहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमावहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमावहाम्यहम्। बोलिए किसी के पास है, बोलिए ब्रो जी, बोलिए। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमावहाम्यहम्। बस एक बार बोलिए, और कोई माता जी बोलिए बोलिए। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनुवाद और तात्पर्य, हाँ बोलिए बोलिए। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद और तात्पर्य इज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मेरे पास मराठी बुक है और मुझे मराठी आती नहीं, लेकिन मैं ट्राई करते। चलिए अनुवाद। परंतु जे लोग अनन्य भक्ति भावाने माझ्या दिव्य स्वरूपांचे चिंतन करीत माझी उपासना करतात त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्यांच्या मी रक्षण करतो। तात्पर्य कृष्ण भावने वाचून ज्याला क्षण भरही सही पड़ रहा राहवत नहीं तो दिवसातून 24 तास केवल श्रीकृष्णांचे चिंतन करतो। चलेगा, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन अर्चन पाद सेवन दास्य सख्य आणि आत्मनिवेदन या 9 विधा भक्तीमध्ये रमणात झालेत असतो। अशा भक्तांना आत्मसाक्षात्कारमध्ये परिपूर्णता प्रदान करणात अशा सर्व क्रिया मंगलमयी आणि दिव्य शक्तीने परिपूर्ण असतात. यामुळे भगवत भक्त भगवंतांचे केवळ सानिध्य प्राप्त करण्याची इच्छा करतो. असा हा भक्त निसंदेह बिना प्रयास भगवत प्राप्ती करतो. यालाच योग असे म्हणतात. भगवत कृपा भगवत कृपेमुळे अशा भक्ताला भौतिक बद्धावस्थेत पुन्हा कधीच परतावे लागत नाही. क्षेम म्हणजे भगवंतांचे अहेतुकी संरक्षण होय. योगाद्वारे कृष्ण भावनेची प्राप्त होण्याकरिता भगवंत भक्ताला सहाय्य करतात. आणि जेव्हा भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतो तेव्हा त्याचे दुःख पूर्ण बद्धावस्थेत पतन होण्यापासून रक्षण करतात. ठीक बडा 50% ये पहली बार बड़ा. थोड़ा समझ में आता है. महाराष्ट्र में रहे ज़्यादा, बॉम्बे में रहे ना, 10 साल बॉम्बे में ही रहे, मीरा रोड मंदिर में, तो समझ में आता है लेकिन बोला कभी नहीं. ठीक है, तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अनन्या चिंतयंतो मां ए जना परिपासते तेषाम नित्ता अभिक्ता नाम योग क्षेम महामहम. तभी तक भगवान ने यह बताया कि जैसे कि पहले हम भगवद्गीता के इससे पहले इस श्लोक से पहले भगवान ने बहुत सारी बातों को बताया. भगवान ने बताया कि छिड़े पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, कि व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है पुण्य करता है तो स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होता है. लेकिन जैसे ही उसके पुण्य जो छीण होते हैं तो मृत्युलोक में वापस आ जाता है. तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन जो अनन्य भाव से अनन्य चिंतयंतो मां, अगर कोई अनन्य भाव से अगर मेरी भक्ति करता है, उससे पहले अन्य लोगों की भक्ति के बारे में बता दिए हैं भगवान. देवता की भक्ति करेगा तो देवलोक में जाएगा, पितरों की भक्ति करेगा तो पितृलोक में जाएगा, है ना. तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के बारे में बताएं कि अगर उनकी भक्ति करेंगे तो उनको लोक में जाएंगे. लेकिन अगर मेरी कोई भक्ति करता है, अनन्या चिंतयंतो मां, भगवान केवल बता रहे हैं, वो प्रेशर किसी को ऊपर डालते नहीं है, क्योंकि हर एक जीवात्मा स्वतंत्र है. स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने, क्योंकि प्रेम तभी हो सकता है जब स्वतंत्र रहे व्यक्ति, है ना. प्रेम तभी हो सकता है. तो भगवान ने जीवात्माओं को प्रकट भी किया तो किस लिए, वो मेरे से प्रेम करे, मेरी सेवा करे. लेकिन ये प्रेम और सेवा तभी हो सकता है जब वो स्वतंत्र रहेगा, नहीं तो नहीं हो सकता है. बांध के रखेंगे तो थोड़ी ना किसी से कोई प्रेम करेगा. तो भगवान केवल बता रहे हैं कि कोई अनन्य भाव से अगर मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव से भक्ति करता है, तो ए जना परियुपासते तेषाम नित्याय भिप्तानाम योगक्षेम वाम. यहाँ पे अनन्य भक्तों की बात करते हैं. देखिए, जो अनन्य भक्त है ना, पहली बात है कि वो भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कुछ देने की बात कर रहे हैं, है ना. कुछ देना चाहते हैं. अनन्य भक्ति करता है तो उसको क्या देना चाहते हैं, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं. कहते हैं कि जो अनन्य, लेकिन जो अनन्य भक्त होता है ना, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता है, कभी कुछ नहीं मांगता है. वो तो हम जैसे भक्तों का स्थिति ऐसा है कि हम मांगते ही रहते हैं. एक वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हुए, वो कहते हैं कि भगवान प्रभु, मैं आपका दर्शन तो करता हूँ आके, लेकिन दर्शन करते करते कभी मेरी मति खराब हो गई और मैं आपसे कुछ मांग लिया तो प्रभु आप देना मत. प्रभु आप देना मत. अगर दर्शन करते करते मेरी कभी मति खराब हो गई, मैं कुछ मांग लिया तो प्रभु आप कुछ देना मत. क्योंकि मैंने मांगा और आपने दिया, मैंने मांगा आपने दिया तो मैं क्या कहलाऊंगा? भिखारी कहलाऊंगा मैं, भीख मांगते रहता हूँ, है कि नहीं? मैं प्रेमी नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि प्रेम मतलब वहां पे कुछ आशा नहीं रहती है कि ये चाहिए। रियल प्रेम मतलब वहां पे कुछ इच्छा नहीं रहती, केवल हम सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, इच्छा नहीं होती वहां पे। तो बताते बहुत सुंदर संत कि मुझे मत देना, मत देना प्रभु मुझे, क्योंकि जिस दिन आपने दे दिया उस दिन मैं मजदूर हो जाऊंगा। मजदूर होते हैं ना, काम करते हैं और शाम को बोलते पैसा लाओ, है ना? शाम को हमको चाहिए पैसा, उसके बिना नहीं चलेगा। तो मजदूर कहलाऊंगा, प्रेमी नहीं कहलाऊंगा प्रभु। इसलिए मैं कभी मति फिर गई मेरी, तो आप देनी दीजिए मत, ये प्रार्थना करते हैं भगवान से, आप मत दीजिएगा। और यही प्रार्थना हमारे जितने भी आचार्य सब ने किया है, ये प्रार्थना है ना। ध्रुव महाराज कांच के टुकड़े के लिए गया था प्रभु, प्रहलाद जी भगवान ने बोला क्या चाहिए, प्रकट हुए लेकिन कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे। विजय हाँ, बनिया थोड़ी ना हूं मैं, कुछ नहीं मांगे। ये अनन्य भक्त जो होता है ना, भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगता है, कभी भी कुछ नहीं मांगता है, कभी भी कुछ नहीं मांगता है। तो ऐसे अनन्य भक्तों के, ऐसे अनन्य भक्त का जब हम संगति करते हैं ना, तब हम भी अनन्य भक्ति कर सकते हैं, ये आशा हम रख सकते हैं। तो ऐसे अनन्य भक्त जो कि श्रील प्रभुपाद जी के हम शरण में रह के हम भक्ति कर रहे हैं, और उनसे जब प्रार्थना करेंगे ना, तब जाके इस प्रकार की भक्ति हम कर सकते हैं। अनन्य भक्ति उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हम कभी भी उनके ऋण को, ऐसे अनन्य भक्तों के ऋण से हम कभी भी अपने आप को मुक्ति नहीं पा सकते, कभी भी नहीं। भगवान कहते हैं भागवतम की देवर्षि भूता निराम पितृणाम, ये बहुत सारे ऋण है वो व्यक्ति के अंदर वो, लेकिन मेरी मुकुंद मेरा खुद का शरण अगर रोल ले लेता है तो क्या होता है, उसके सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्तों का ऋण है ना, उससे व्यक्ति कभी भी नहीं मिल, उससे मुक्ति उसको कभी भी नहीं मिलती है, कभी भी नहीं। बहुत सुंदर सा एक श्लोक महाभारत में, एक सुंदर सा श्लोक है, पृथ्व्याम द्रव्यम नास्ति यद दत्वा तद गृणी भवेत। महाभारत का यह श्लोक है कि पृथ्व्याम द्रव्यम नास्ति यद दत्वा तद गृणी भवेत, कि ऐसे शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद जी के जैसे शुद्ध भक्त, ऐसे भक्तों का ना, जिन्होंने हमको भागवत दिया है, जिन्होंने हमको गीता दिया है, भागवत दिया है, जिन्होंने हमको मंदिर दिया है और सुंदर प्रसादम दिया है, भागवत दिया, मंदिर दिया, प्रसादम दिया, और सबसे बड़ी बात कि भक्तों का सोसाइटी दिया है। भक्तों का सोसाइटी ये सबसे बड़ा धन है, क्योंकि भक्त लोग नहीं है ना तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा धन दिया प्रभुपाद जी ने, कि भक्तों का एक सोसाइटी करा कर दिया प्रभुपाद जी ने। ऐसे भक्तों का महाभारत में वर्णन है कि पृथ्व्याम द्रव्यम नास्ति यद दत्वा तद गृणी भवेत। ऐसे भक्तों के ऋण से, जिन्होंने हमको ये सब प्रदान किया है उसके ऋण से, पृथ्व्याम द्रव्यम नास्ति, पूरी पृथ्वी को बेच डाले ना फिर भी हम उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, फिर भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे अनन्य भक्तों का, तो ऐसे जो अनन्य भक्ति भगवान का करता है, जहां पे भगवान ये बात को बता रहे हैं कि अनन्य भक्त अनन्य चिंतन तो माम, तो भगवान बोलते हैं कि मैं उसका भरण पालन पोषण करता हूं, योग क्षेम वहां में। हमें तीन बात को बताते हैं, है ना, तीन बात को बताते हैं ना, कि योग क्षेम वहाम्य हम, जो उसका आवश्यकता है मैं उसको देता भी हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षण भी करता हूं मैं। मतलब भगवान वाचमैनी भी करते हैं, भगवान के अनन्य भाव से भक्ति कर रहे तो वाचमैन रखने की जरूरत नहीं है। कितना ये सब सिद्धांत बताया गया है, लेकिन ये सब नहीं समझते हम। फोकट का कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, ये करते हैं, बैंक में करते हैं, बैंक में लॉकर रखते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन अनन्य भक्ति करते हैं तो भगवान यहाँ बता रहे योग अच्छे में, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ और कुछ नहीं है तो उसको देता भी हूँ। इस प्रकार से भगवान कहते कि योग क्षेम वहां में मैं वहन करता हूँ, वहन करता हूँ। ये वहन शब्द है ना बहुत महत्वपूर्ण है, वहन शब्द। भगवान योग क्षेम वहां बोल रहे हैं ना, योग क्षेम वहां में हम, भगवान वहां पे योग क्षेम करो में भी बोल सकते हैं, तो संस्कृत वर्ड ही है। करो में मतलब भी करना होता है, वहां में मतलब भी मैं भरण पोषण करता हूँ उसका। भगवान योग क्षेम वहां में हम के जगह पे करो में भी बोल सकते थे, योग क्षेम करो में, लेकिन भगवान वहन बोलते हैं। क्यों? इस पे, इस शब्द के ऊपर ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत लंबा टीका लिखते हैं, बहुत सुंदर टीका लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत सुंदर टीका लिखते हैं कि भगवान योग क्षेम करो में ना बोल के वहां में क्यों बोले। वहां में इसलिए बोले कि वहन मतलब समझते हो ना, कि जैसे एक काम करने वाले व्यक्ति बोझाड होता है ना, सर पे भार को वहन करके लेके जाता है ना, भार को बोझाड होता है ना, भगवान ऐसे भक्तों का बोझाड होते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे वहम बोलते हैं। लेकिन प्रश्न उठेगा, मान लीजिए अभी अभी मैंने बताया कि ऐसे अनन्य भक्त वो भगवान से कुछ मांगते ही नहीं, कुछ नहीं मांगते हैं। सोचिए कि अम्बरीश महाराज के समय, अम्बरीश महाराज जब एकादशी व्रत का पारायण कर रहे थे ना, दुर्वासा ऋषि उस समय आए थे, भोजन उनको खिलाना था, लेकिन वो नदी में स्नान करने गए, यहाँ पे पारायण का समय निकल रहा था। अभी पारायण समय से नहीं गए तो फिर एकादशी के फल से वंचित हो जाएंगे। उस समय बड़े टेंशन में अम्बरीश महाराज ब्राह्मणों से सलाह लिया क्या करना चाहिए, अभी ऋषिवर आए नहीं, अगर मैं कुछ ग्रहण कर लूंगा तो ऋषि क्रुद्ध हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे ऋषि। तो ब्राह्मणों ने यह सलाह दिया कि आप तो निर्जला की हो, एक बूंद जल, एक बूंद जल ले लीजिए, और उस एक बूंद जल को जब अम्बरीश महाराज ग्रहण करने जा रहे थे ना, उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, और दुर्वासा ऋषि देखे और उनको बहुत क्रोध आया, तुम थोड़ा भी मेरा इंतजार नहीं किया, थोड़ा भी इंतजार नहीं किया। और जैसे ही क्रोध आया, इतना कुपित हुए ऋषि, तुरंत ही उन्होंने श्राप दिया और तुरंत ही अपने जटा को एक बाल निकाला और एक पटका और एक कृत्या को उत्पन्न किया, बहुत बड़ी राक्षसी को उत्पन्न किया, बहुत बड़ी राक्षसी को उत्पन्न किया। वर्णन करते हैं भागवत में कि कृत्या इतनी क्रूर थी और इतना विशाल शरीर था उसका कि व्यक्ति उसको देख ले, देखने मात्र से वो अपने प्राण त्याग दे, इतना क्रूर थी। सोचिए इतनी क्रूर थी, लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के इतने अनन्य भक्त थे कि उस कृत्या जो कि काल स्वरूपा और उनको ही मारने के लिए प्रकट हुई थी, लेकिन इतने अनन्य, इतने धीर थे अम्बरीश महाराज की एक कदम पीछे तक नहीं हटे, अपने रक्षा का भीख भी नहीं मांगे भगवान से, के कृष्ण रक्षा माम पाही माम, भीख भी नहीं मांगा और एक कदम पीछे तक नहीं हटे। कैसा नहीं कि कृत्या उत्पन्न हो गई तो पीछे हट गए, वो भी नहीं, बिल्कुल निर्भय धीर व्यक्ति, अनन्य चिंतन, इसको बोलते अनन्य चिंतन। तो मां, तो प्रश्न ये उठा कि भगवान बोलते कि मैं भरण पोषण करता हूं, जो नहीं उसको देता हूं और उसका वहन करता हूं। तो प्रश्न उठा कि जब भक्त, शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त जब चाहता ही नहीं तो भगवान क्यों देते हैं? तब भगवान उस समय वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये वहम, वहां में जो भगवान बोल रहे हैं ना, वहां में इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान जो है ना ऐसे भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, वहां पे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती, एक उदाहरण देते हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, जो उनकी भक्ति करता है कितना प्रेम करते हैं। तो कहते हैं कि इतना प्रेम करते हैं कि जैसे एक वत्सला, ये वहम, वहम शब्द को लेकर बोलते कि वत्सला, भगवान की तुलना वत्सला गाय से की जाती है, ये एक गाय का नाम है वत्सला। तो एक गाय जो है किस प्रकार से जन्म बच्चों को देती है, गाय को, गाय बच्चों को जन्म दे देती है, तो देखा है आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है, इतने कम लोगों ने देखा है। तो जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो आप देखिए वो गाय जब भी बच्चा जमीन पे गिरता है तो उस समय खून से, मल से, मूत्र से वो लथपथ रहता है, तो उस समय वो गाय क्या करती है, उसको चाटती है। क्या गाय मांसाहारी है तो क्यों चाटती है? तो मांस लगा हुआ है, मल मूत्र लगा हुआ है, क्यों गाय चाटती है? क्योंकि उस बच्चे से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। भगवान अपने भक्तों का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कहते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए इसी वत्सला गाय के जैसा, जैसे अपने बच्चे को चाटती है ना, इसी वत्सला गाय की तरह भगवान चाटते हुए उसके दुर्गुणों को धोते हैं। विचार करिए, दुर्गुण को धोते हैं भगवान उस वत्सला गाय की तरह, वत्सला गाय की तरह चाटते हैं भगवान उसके, धोते हैं दुर्गुणों को, जो उनकी अनन्य चिंतनतों में, जो इनका अनन्य भाव से भक्ति करता है, या फिर अनन्य भक्तों के शरण में रखे भक्ति करता है। तो हम लोग का ये बड़ा सौभाग्य कि अनन्य भक्त के शरणागत रखे, ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि अनन्य भक्तों के शरणागत में रखे भक्ति करने का जो सौभाग्य है ना, इस संसार पे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्त बहुत सारे हैं संसार में, कृष्ण भक्त कितने हैं, बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन अनन्य भक्तों के अंदर में रह के सेवा करने का जो लाभ है ना, वो केवल यहाँ पे हम जो बैठे हुए हैं ना, प्रभुपाद जी के अंदर में रह के जो सेवा कर रहे हैं ना, उसका कुछ अलग ही फल और उसका कुछ अलग ही प्रभाव है। नहीं तो केवल लोग भावुकता करते करते, कृष्ण भजन गाते गाते, दुनिया भर का करते करते खत्म हो जाते हैं, वो भावुकता में बहे रहते हैं। लेकिन भक्ति तभी पूर्ण होती है जब अनन्य भक्तों के, और अनन्य भक्त भगवान यहाँ बोल रहे हैं बनने के लिए, तो ये अनन्य भक्ति तभी प्राप्त होगा जब हम अनन्य भक्तों के अंदर में रह के सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि वत्सला गाय की तरह भगवान प्रेम करते हैं। कभी कभी वो गाय देखिए, वो बच्चे से इतना प्रेम करती है कि उस गाय को सालों साल भरण पोषण कौन करता है? गाय के रखवाली करने वाला करता है ना। वो गाय उसको पहचानती है क्योंकि रोज उसको सुबह शाम खिलाता है, वो ग्वाला जो भी गाय की सेवा करता है सुबह शाम उसको खिलाता है। लेकिन उस समय देखा गया कि जब वो बच्चा जन्म देती है ना, कभी कभी ना वो गाय उस ग्वाले को भी सिंह से मार देती है, उस ग्वाले को जिससे वो हमेशा प्रेम करती थी, जो उसको खाने के लिए देता था, उस ग्वाले को भी कभी कभी मार देती है, उस बच्चे से इतना प्रेम करती है। और इस यही प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं, इसलिए वह हम शब्द ये वत्सला गाय इससे तुलना करते हैं। बहुत लंबी टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इस श्लोक के ऊपर, तो बहुत सुंदर बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि फिर भी हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। प्रश्न क्या था? भक्त तो नहीं मांगते, भगवान क्यों देते हैं? काय के लिए फोकट का टेंशन लेते हैं? टेंशन क्यों लेते हैं भगवान? काय के लिए उसका पालन पोषण करते हैं? जब भक्त ऐसा भक्त मांगता ही नहीं कुछ, तो काय के लिए पालन पोषण करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी में इतने ब्रह्मांड को मैं पालन करने वाला हूं, मेरे से इतने इतने ब्रह्मांड निकले हुए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का मैं पालन पोषण करता हूं, तो ऐसे एक छोटे भक्त का अगर मैं कुछ उसको दे रहा हूं तो मेरे पास क्या भार है, क्या टेंशन है मुझे? ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कि टाटा अंबानी किसी को 50 पैसा दिया, उसको कोई टेंशन है नहीं ना। ये भी उपमा ठीक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही दिया, ये ठीक नहीं उपमा। तो भगवान को कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछा जाए कि नहीं प्रभु, फिर भी टेंशन तो है। कैसे नहीं टेंशन है? टेंशन है प्रभु, फिर भी टेंशन है। आप करते हो ना, और दूसरा भी काम करिए ना, इनके पीछे क्यों पड़े हैं ऐसे भक्तों के, क्यों करते हैं? फिर भी भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखते हुए कहते हैं कि भगवान भक्तों का पालन जो है ना, भगवान भक्तों का पालन, एक श्लोक बताते हैं, उस श्लोक में थोड़ा निकलता हूं। कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भगवान भक्तों का जो पालन है ना, सभोग्या कांता इव, इस टीका लिख इस श्लोक के ऊपर टीका लिखते हुए कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि स भोग्या कांत इव, भगवान अपने भक्तों का देख रेख न कहते हैं कि मैं उस प्रकार करता हूं जैसे एक गृहस्थ आसक्त व्यक्ति, गृहस्थ आसक्त व्यक्ति अपने पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने गृहस्थ आसक्त व्यक्ति अपने बच्चों अपने पत्नी का पालन पोषण करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी करता है, कुछ भी कर लेता है, चोरी भी करना पड़े तो भी करता है, लेकिन पालन करता है। और इसे भी मनुष्य संहिता के अनुसार करना भी चाहिए, करना भी चाहिए मनुष्य संहिता के अनुसार, अपने उसका जिम्मेदारी है कि वो अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण करे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिस प्रकार से भगवान, जिस प्रकार से एक गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्था में आसक्त व्यक्ति, जिसको गृह मेधी बोलते हैं, गृहस्थ मतलब गृहस्थ में आसक्त नहीं है, गृह मेधी व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों से इतना आसक्त रहता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको मालूम है कि ये आसक्ति है, ये सब ये है, लेकिन समस्या आया तो उसका सटक ही जाता है। देखिए ना, कभी कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, पूरा फैमिली गया हुआ है, परिवार गया हुआ, बच्चे भी गए हैं, रिजर्वेशन है, सब बैग उठा के लेके जा रहा है, बैग खींच रहा है, गोद में बच्चे को लिया है, कंधे पे लिया हुआ है, गया स्टेशन में, अभी ट्रेन में बैठा, चढ़ा ट्रेन में, पहले से जो उसका रिजर्वेशन है उस पर कोई और बैठा हुआ है। होता है ना ऐसा, कभी हम भी जाते हैं तो कोई और पहले से बैठा रहता है, लेकिन वो जाता है बोलता है कि मेरा सीट है, तो वो जो व्यक्ति बैठा रहता है वो भी कभी कभी सोचता है ऐसा कि ऐसे ही बोल रहा होगा, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं, थोड़ा इधर हटो तो भी थोड़ा देखे, थोड़ा से ऐसा करेंगे, थोड़ा से वो हटेंगे नहीं, थोड़ा से ऐसा करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति अभी पत्नी बच्चे साथ में, वो लड़ पड़ता है, भाई मेरा रिजर्वेशन है, देख टिकट मेरा, उठ, और पत्नी को बोलता बैठ, पैर पसा के बैठ, कोई किसी को बैठने मत देना सोचिए आसक्ति है, विचार करिए, हम सब इसमें फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं मैं किसी और का दास्तान कर रहा हूं हम सब फंसे हुए हैं ऐसा, उस समय सारा ज्ञान खत्म ये आसक्ति है क्या है वो सब खत्म, पहले तू हट और तू बैठ तो भगवान ऐसे पालन पोषण करते हैं, एक गृह मेदी की तरह भगवान जिस प्रकार से वो पत्नी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इतना टेंशन लेता है, भगवान ऐसे पालन पोषण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि कोई भार नहीं मुझे, कोई भार नहीं मुझे, भगवान को पालन पोषण करने के लिए कोई भार नहीं, इसलिए मैं वहन करता हूँ उसके वजन को। तो इस प्रकार से भगवान, ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। तो भगवान भक्तों का, ऐसे अनन्य भक्तों का बहुत चिंता करते हैं भगवान, और उसका उसके पास जो भक्ति करता है उनका, जो नहीं है उसको प्रदान करते हैं, और जो है उसकी रक्षण भी करते हैं, वहन करते हैं, पालन पोषण करते हैं भगवान। एक क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अभी मैं जो बताया शुरुआत में आप लोग को, एक भय से मुक्त करना है सबको, तो चलिए वो भय से मुक्त करने की एक बात, कि गरुड़ पुराण में भगवान एक बात को बहुत सुंदर बात को कहते हैं। ये जो मुझे प्राप्त हुआ ना पिछले 8-9 महीना पहले की बात है, 8-9 महीना पहले ये जो श्लोक है ना, पूरा हमारा जो ICC ग्रुप है ना इस्कॉन का, वो ICC ग्रुप में 8-9 महीना पहले ये श्लोक बहुत तेज़ी से घूम रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो भय है ICC ग्रुप, मतलब जो इस्कॉन के सारे प्रेसिडेंट उस ग्रुप में हैं, जो भी मैनेजर्स हैं सब उस ग्रुप में हैं सारे इस्कॉन के, तो मेरे को तभी से ये प्राप्त हुआ क्योंकि उसमें बहुत घूम रहा था, और बड़े बड़े सीनियर भक्त लोग उस पर कमेंट्स भी कर रहे थे, उसको बता भी रहे थे सारे चीज़ें, सब डिस्कशन चल रहा था, तभी ये श्लोक जो है ना, सत्य बताऊं कि मेरे हृदय को छू गया उस समय, कि भगवान एक गरुण पुराण के श्लोक में, और तभी से मैंने इस श्लोक जब मुझे प्राप्त हुआ ना, तो मैंने इस श्लोक को लेकर तब से मैं कई जगह पे इस श्लोक को बता चुका हूँ, और कभी कभी तो मैं 2-2, 3-3 घंटा 4-4 घंटा इस श्लोक को लेके बताया हूँ मैंने। तो उस श्लोक गरुड़ पुराण का है, भगवान स्वयं, भगवान विष्णु स्वयं अपने मुख से कहते हैं इस बात को। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कफवात पित्त आदि दोषे न, कफवात पित्त आदि दोषे न मद भक्तो यदि नाश मरे। देखिए ये जो शरीर है ना, बहुत सारे रोग है इसके अंदर, और विशेषता ये जो शरीर है कफवात पित्त से बना हुआ है। कफवात पित्त ये तीनों बैलेंस रहे ना, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन कोई भी इसमें डिसबैलेंस हुआ ना, तब कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो ये भक्तों को ये चिंता, सबसे बड़ी चिंता है भक्तों को भी लगी रहती है कि अंत समय में, क्योंकि अभी उनको मृत्यु की चिंता नहीं रहती। गीता सुनते हैं, क्या क्या करते हैं, और पूरा एकदम मृत्यु से तो ऐसा लगता है कि उनको कोई टेंशन ही नहीं मृत्यु का, है ना, जब मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु के बारे में ही सब सिखाया जाता है, कैसे मृत्यु को प्राप्त करना, क्या क्या, वो डर ही निकल जाता है, वो तो पहले ही काम हो जाता है शुरुआत में ही। भक्त बने, माला जप करने लगे, ये भय से तो सब धीरे धीरे मुक्ति हो जाते हैं। तो लेकिन अंत समय का एक भय रहता है, अंत समय का भय रहता है कि क्या अंत समय में मैं भगवान का स्मरण कर पाऊंगा, कर पाऊंगी अंत समय में। अंतकाले, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान भगवद्गीता में ही बोलते हैं अंतकाल में जो जैसी बुद्धि रखा वैसे उसकी गति होता है। हो सकता है भले ही हम जब किए पूरा, लेकिन अंतकाल में हम फिर बेड पे पड़े हुए चिंतन, घर परिवार कैसे चलेगा, अरे मैं चल भी जाने वाला हूँ, बच्चों का क्या होगा, ये करोगा, मर गए तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगा। क्योंकि भगवान इस बात को क्लियर कर दिए है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अपने कलेवर, अपने इस शरीर को अंतकाल में जो जिस प्रकार से सोचते हुए स्मरण करते हो, उसकी गति उसी प्रकार की होगी। लेकिन चिंता नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अंतकाल में, क्योंकि जीवन भर जो किया ना वही अंतकाल में याद आता है, वही याद आता है अंतकाल में, इसलिए चिंता नहीं है, वही अंतकाल में आ जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं कोने में ये चिंता रहता है कि क्या, क्योंकि कई सारे ऐसे देख भी लेते हम, कई सारे जो शरीर को ऐसा त्यागे और लास्ट में उनको बहुत तकलीफ हुआ, क्या हुआ, ये सारे देखते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोने में पड़ा रह जाता है ये चिंता कि क्या होगा अंतकाल में, क्योंकि शरीर साथ देना बंद कर देता है, शरीर जीर्ण होने लगता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, श्रवण इंद्रिया सुनाई देना बंद होने लगता है, आंख से दिखाई देना बंद होने लगता है। और कुलशेखर वाड़वाल तो इतना भी कहते हैं कि कंठावरोध न विदो, वो कंठ जो है ना, देखिए ना, रुद्ध होने लगा है। थोड़ा क्या है, 2-3 घंटा भगवान के बारे में बोल लेते कि गला दुखने लगता है, रुद्ध होने लगता है, खराश आने लगता है, क्या क्या होने लगता है, क्या क्या फिर डालना पड़ता है। देखिए ऐसा शरीर है, मात्र 2-3 घंटा बोलने पे क्या हालत हो जाता है शरीर का, कंठावरोध न विदो, ये सब रुद्ध हो सकता है अंतकाल में, सारे रुद्ध हो सकता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्मरण क्या करेंगे, मुंह से कीर्तन नहीं होगा। इसलिए हरिनामामृत में एक बहुत सुंदर बात को बताया गया है कि निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्यति भविष्यति, निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्यो भविष्यति। ये जो निश्वास के ऊपर हम सांस लेते हैं ना, फिर उसके बाद छोड़ते हैं, तो श्वास लेने को, श्वास लेने के बाद जब हम छोड़ते हैं ना, उसको निश्वास बोलते हैं। हमने एक बार श्वास ले लिया, जब छोड़ते हैं तो क्या है, उसको निश्वास बोलते हैं। तो निश्वासे नहीं विश्वास हो, निश्वासे नहीं विश्वास हो, हरिनाम चिंतामणि, निश्वास के ऊपर कभी भी विश्वास करो मत। हमने सांस ले लिया, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं ना, उसके ऊपर कभी विश्वास करो ही मत। निश्वासे नहीं विश्वास हो कदा रुद्यो भविष्यति, भविष्य में कभी भी ये जो श्वास है ना रुक सकता है, या फिर छोड़े तो निकल सकता है, उड़ सकता है और हरी बोल हो सकता है। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्यत भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्या। इसलिए क्या करो, कि कीर्तनी मतो बाल्या श्री हरि नाम है केवलम। इसलिए जब तक ये जब सांस चल रहा है ना तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, जितना हो सके कर लो। जब तक सांस ये चल रहा है हमको जप करते रहना चाहिए, भगवान का नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। इसके ऊपर कभी विश्वास मत करो। तो 8:30 बजे तक, 8:30 ना, थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हिसाब से नहीं है, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है, वो कथा नहीं है भागवत कथा। तो निश्वास है नहीं विश्वास हो कदार उद्यत भविष्यति कीर्तनी मतो बाल्या हरे नाम है केवलम। आप कीर्तन कर लीजिए, नहीं तो कभी भी प्राण कभी भी छूट सकता है। खैर, डर क्या था हमको कि अंत समय में क्या होगा, क्या होगा अंत समय में, ये सारे चीज इतनी समस्या है शरीर का, इतनी समस्या है कि कुछ स्मरण भी नहीं। भगवान यही बोलते ना, अंत काले समय में स्मरण मुक्ता, स्मरण स्मरण शक्ति भी काम नहीं करती है, क्या स्मरण करेंगे। मान लो जब नहीं, कुछ नहीं, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, कान से सुना नहीं जा रहा है, लेकिन स्मरण शक्ति भी काम नहीं करती है, ऐसी स्थिति हो जाती शरीर का। तो ये टेंशन को मिटाने के लिए, ये चिंता को मिटाने के लिए, जो एक चिंता है ना भक्तों के जीवन में, इस चिंता को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर श्लोक दिया, बहुत सुंदर। वह यही श्लोक है कि कफ पित्त वात आदि दोषे न, जब कफ पित्त वात के कारण, इस दोष के कारण, कफ पित्त वात आदि दोषे न मद भक्ता यदि नाश मरेत, इस दोष के कारण अंत काल में अगर मेरा भक्त न स्मरेत, नहीं स्मरण कर पाता है। देखिए एकदम क्लियर है, बहुत कठिन नहीं है श्लोक, एकदम क्लियर है। इस दोष के कारण अगर कभी मेरा भक्त जो है अंत समय में कुआं में चला गया है ना, अनकॉन्शियस हो गया है ना, चिंतन नहीं कर सकता अभी, अनकॉन्शियस कुआं में जाने के बाद व्यक्ति क्या हो, तो मरा, लॉस की तरह है। कुआं में जो व्यक्ति गया उसको थोड़ी ना, उसका नया, अगर बच गया तो नया जीवन मिलता है उसको, नया जीवन मिलता है। कभी कभी अपनी स्मरण शक्ति भी खो बैठता है, सब कुछ नया जीवन हो जाता है उसका। तो कफ पित्त वात आदि दोषे ना मद भक्ता यदि नाश मरे, नहीं स्मरण कर पाता है इस दोष के कारण, अंत समय में नहीं कर पाता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तस्याम स्मरामि अहम। कफ पित्त वात उसको प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ी ना प्रॉब्लम है, उस समय मैं उसका स्मरण करता हूं, मैं उसका स्मरण करता हूं, मेरे को थोड़ी ना दोष है। कफ वात पित्त का प्रॉब्लम उसको है, हमको थोड़ी ना, मेरे को थोड़ी ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्याम स्मरामि अहम, उस भक्त का मैं स्मरण करता हूं, मैं चिंता करता हूं, मैं स्मरण करता हूं। और भगवान स्मरण कर ले तो फिर अब क्या बचा, भगवान याद कर लेते और क्या बचा है बताइए। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी कोई नास्तिक या फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, अरे भगवान ऐसे ही फेंक दिए, क्या मालूम क्या होगा। तो भगवान सांत्वना देते हैं कि ऐसा भी मत सोचो, भगवान सांत्वना देते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास नहीं होता। जैसे कि आज मैं ही वर्णन कर रहा था रामायण का प्रसंग, उसमें कैकेयी ने राम को बोला कि वनवास में जाओ, और भगवान राम बड़े प्रसन्नता से उसको स्वीकार किए। तो कैकेयी को विश्वास हो कि मैं सच में बहुत प्रसन्न हूँ, प्रसन्नता से जा रहा हूँ, भगवान ने वहां पर शिव जी का कसम खाया, शिव जी का कसम खा के माता कैकेयी को बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी कृपा से मैं वन में जा रहा हूँ, मुझे मौका मिल रहा है। भगवान ने तसल्ली दिलाया। तो ऐसा हो सकता है कि हम सोच सकते हैं कि नहीं भगवान ने ऐसे ही बोल दिया, मेरा स्मरण, भगवान को इतना सारा काम है मेरा क्यों स्मरण करेंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं, कफ पित्त वात का प्रॉब्लम उसको है, मेरे को नहीं है, मेरे को नहीं है कफ वात पित्त का। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं उसका स्मरण ना करूं, तो भगवान उसी श्लोक में कहते हैं कि यदि अहम न स्मरामि, यदि मैं उसका स्मरण नहीं करता हूं, तो भगवान कहते हैं कि न च कृतघ्नो मत समा, न च कृतघ्नो मत समा। देखिए बहुत सुंदर बात बताते हैं, अगर मैं उसका चिंतन में उसका स्मरण न करूँ ना, तो मेरे जैसा कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं है इस पूरे संसार में, मेरे जैसा कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं है। दो वर्ड है, एक है कृतज्ञ और एक है कृतज्ञ। जिसने एहसान किया, एहसानों का बदला चुकाना, उसको कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन एहसान किसी ने किया और उसके बारे में कुछ सोचना नहीं, उसको कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ, ये दो शब्द है। कृतज्ञ मतलब किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया, सेवा या हमको मदद किया, तो सामने से हम भी उसका मदद करते हैं, इसको कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ कि मेरा कोई मदद किया तो मैं उसका भी मदद किया, मेरा कर्तव्य बनता है। हमको कोई बड़े परिस्थिति से, बड़ा भय से, या फिर कठिन से कठिन समस्याओं से अगर हमको कोई बचाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता कि मैं भी उसको सेवा करूं। इसको कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञता का गुण ये हर भक्त के अंदर होना चाहिए। ये कृतज्ञता का गुण नहीं रहेगा ना, तो वो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है। कृतज्ञता का गुण होना चाहिए उसके अंदर, कृतज्ञता का गुण होना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम का आदान, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये सारे चीजें होना चाहिए, आपस में आदान प्रदान होते रहना चाहिए, नहीं तो भक्त नहीं है। भक्त आपस में थोड़ी नहीं लड़ाई करते, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अभी अभी जुहू में कुछ 10 या 11-12 तारीख को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का व्यास पूजा को मनाया गया, तो मैं गया था वहाँ पे। तो महाराज ने लेक्चर दिया 1 घंटे का, और लेक्चर के बाद एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा महाराज को, व्यक्ति नहीं कोई भक्ति था, क्योंकि वहाँ पे सब डिसाइपल ही बैठे हुए थे। तो उसने प्रश्न क्या पूछा, मैं पहली बार ऐसा प्रश्न सुना। उसने प्रश्न पूछा कि महाराज, अगर दो भक्त आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो भक्त आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इतना इतना भयंकर लड़ाई कर लिए, अगर लड़ाई करते करते एक भक्त उसमें मर जाता है, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगा? महाराज तो ऐसा उंगली किए और मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि महाराज ने प्रश्न का 10 मिनट टाइम दिया था कि 10-15 मिनट समय है, आप लोग प्रश्न कोई पूछना, तो पहला प्रश्न ही यही निकला। पहला प्रश्न निकला, दो भक्त लड़ाई कर रहे हैं और लड़ते लड़ते कोई एक मगर मर जाता है, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगा? महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया, और बोले कि पहली बात है, हंसते हुए बोले, पहली बात है कि जो दो भक्त लड़ाई कर रहे हैं और ऐसा लड़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार का लड़ाई कर रहे हैं, पहली बात वो भक्त है नहीं, वो असुर है, वो भक्त नहीं है, वो असुर है। भगवत धाम जाने की बात की बात, वो असुर है। तो भक्तों के बीच में ना हमेशा प्रेम का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, प्रेम का आदान प्रदान होता चाहिए। भक्त लोग कभी आपस में इसमें, वो कृतज्ञता का गुण होता है, कृतज्ञता का गुण होता है। और सबसे बड़े कृतज्ञ शिरोमणि भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो सोचिए, इस संसार में थोड़ा भी कोई हमारा मदद किया तो किस प्रकार से हम उसका मदद करते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान शिरोमणि हैं, कृतज्ञता के शिरोमणि हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर उसका स्मरण नहीं करूंगा, तो सबसे बड़ा इस संसार में कृतज्ञ व्यक्ति मैं हूं, कृतज्ञ। और मैं कृतज्ञ बनना नहीं चाहता हूं, मेरे ऊपर कृतज्ञ का ठप्पा मैं नहीं लगाना चाहता हूं, मैं कलंकित नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए निश्चित रूप से उस भक्त का मैं स्मरण करता हूं और उसको वापस अपने धाम में ले लेता हूं। तो इस प्रकार से भगवान ये बताते हैं, भगवान जो है, भगवान का जीवन है भक्त। भगवान भक्तों को नहीं देखते हैं ना, तो उनको रहा नहीं जाता है। भगवान भक्तों को देखना हमेशा चाहते, रहा नहीं जाता है। हम मंदिर जाते हैं, संडे जाते हैं, हफ्ते में एक दिन जाते हैं, भगवान इंतजार करते हैं और बलराम जी को पूछते हैं कि आज वो भक्त नहीं आया, क्या कारण है, नहीं आया, लेट हो रहा है आज, पूछते हैं भक्तों, भगवान पूछते हैं। इसलिए सब लोग टाइम से जाया करो, हफ्ते में एक दिन तो जाते हैं, उसमें भी टाइम से जाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को वहाँ पे सेवा और ये सब सारे चीज़ें किया करो। हमको लगता है कि नहीं, हम हम टाइम से पहले जाना चले जाएंगे तो उधर बहुत सेवा मिल जाएगा, हैं क्या हो जाएगा, वो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा करते हैं हम, भगवान के, भगवान इंतजार करते हैं, भगवान इंतजार करते हैं भक्तों, भगवान का जीवन है भक्त। देखिए भगवान ये बात को बताए ना कि मुझे कपित्ववाद का दोष नहीं है, तो मैं स्मरण करूंगा उसका, ये सांत्वना दे दिया ना, क्लियर हो गया ना, ये सांत्वना दे दिए, क्लियर हो। तो भगवान बोलते मुझे ये दोष नहीं है। देखिए कभी कभी वो बीमारी का नाटक करते हैं, जगन्नाथ ये पूर्णिमा के बाद स्नान के बाद भगवान को बीमार पड़ते हैं, ये बीमारी का नाटक है। सच में भगवान बीमार नहीं पड़ते हैं, वो तो लक्ष्मी जी को टाइम देने के लिए बीमार पड़ते हैं, लक्ष्मी जी को, क्योंकि लक्ष्मी का कंप्लेन हमेशा रहता था, ये बड़े बड़े पंडे लोग बड़े बड़े पेट लेकर जब देखो तब आजू बाजू घूमते रहते, कल भोग खिलाते रहते, भोग खाते रहते हैं, मेरे को मेरे किसे काय के लिए शादी की हो, जब देखो तब ये लोग पीछे पड़े रहते हैं। किया सबको साइड में, सारे पंडे को हटा किया पटबंद 15 दिन लक्ष्मी जी को टाइम देने के लिए। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, ये सारा गुहिया बात जो है ना प्रकट होगा, बाहर से तो दिखता है भगवान बीमार पड़े, भगवान बीमार पड़ते नहीं है, नहीं पड़ते है भगवान बीराम नहीं पड़ते है। किया पट 15 दिन के लिए, लक्ष्मी जी को टाइम दिया, लेकिन 14 दिन जब बिता ना तब भगवान को बेचैनी होने लगा, बेचैनी, इतना बेचैन होने लगे कि लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगे, बस हो गया, मैं मेरे भक्तों को देखे बिना नहीं रह सकता है, लक्ष्मी जी कृपा करके बस अभी पट खोल दो, पट खुलवा दो, अभी मुझे भक्तों को देखना है मेरे, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। लाख लाख प्रयास करते हैं भगवान लक्ष्मी जी को मनाने के लिए उस गर्भगृह में, बड़ी सुंदर लीला है, अभी तो मैं शॉर्ट में थोड़ा टच कर रहा हूँ, सुंदर लीला है किस प्रकार से भगवान मनाते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी का परमिशन लेते हैं, भगवान लक्ष्मी का परमिशन लेते हैं। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि तहां सम्मति लैया, भगवान लक्ष्मी जी का सम्मति लेते हैं और कन्विंस कर लेते हैं, और करके तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ और दर्शन करके तुरंत आ जाना। पट खोलता है और रथ यात्रा क्यों अरेंज होता है, क्योंकि इतना दिनों से भगवान परेशान थे भक्तों का दर्शन किए बिना, इसलिए भगवान बाहर निकल कर रथ पे बैठते हैं, रथ पे बैठ कर हजारों करोड़ों भक्तों का दर्शन करते हैं भगवान, हजारों करोड़ों भक्तों का दर्शन करके बाहर निकलते हैं भगवान। भक्त भगवान का जीवन है भक्त, दर्शन करते भगवान। लक्ष्मी जी बोलते जल्दी आना, प्रभु बोलते कि हाँ जल्दी आऊंगा, अंदर अंदर बोलते एक बार जाने दे बाद में फिर देखते हैं एक बार जाने दे फिर बाद में बात की बात है, गए फिर क्या जल्दी आए, फिर तो लक्ष्मी जी निकल के गई, हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी निकल के गई, बोले कि अब चलो, फिर से कन्विंस करके भेज देते हैं, फिर से कन्विंस करके उधर चले गए, वृंदावन गुंडीचा मंदिर में चले गए, लक्ष्मी जी बुलाने गई थी लेकिन फिर से कन्विंस करके भेज दिया लक्ष्मी को। भक्तो भगवान, भक्त जो है ना भगवान का जीवन है, भगवान हमेशा देखना पसंद करते हैं भक्तों को हमारा, और यही कारण है कि भगवान यहाँ पे आते हैं। भागवत में जब 6 प्रश्न पूछा गया नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा, जब 6 प्रश्न पूछा गया ना भागवत में, उसमें एक प्रश्न है कि भगवान क्यों प्रकट हुए इधर, क्या जरूरत था भगवान को आने के लिए, काय के लिए प्रकट हुए ऐसे जगह पे, क्यों प्रकट हुए भगवान। तो अनेक कारण है, उसके अनेक कारण बताया गया है भागवत में भी, भगवद गीता में भी बताया गया है। भगवद गीता में क्या बताया गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की सब सुने ना, बड़ा गूज से टीवी पिक्चर ऐसे में आता है, जब जब धर्म की हानि होता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये रियल कारण नहीं है भगवान का प्रकट होने का, रियल कारण नहीं है। भले से कितना भी संसार में सब चल रहा है, देखे है जो भी आप लोग कृष्णा लीला क्या क्या टीवी में, परित्राणाय साधुनाम विनाश आया चाहे उसका दुष्टों का विनाश करने के लिए। धर्म जब हानि होता है उस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन ये दूसरा कारण है, ये भी एक कारण है लेकिन रियल कारण, असली कारण जो है ना, वास्तव में भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं, ये रियल कारण है। भागवत में बताया भगवान भक्तों को सुख देने के लिए। भगवान को क्या जरूरत है असुरों को मारने के लिए यहां पे आने का? वो अपने धाम में बैठे बैठे मार सकते हैं, काहे के लिए इधर आने का? ये सच्चे में भगवान ना मार सकते हो, इच्छा करने मात्र से मृत्यु हो जाएगा। लेकिन भगवान एकमात्र कारण यही है भगवान का प्रकट होने का, कि वो भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, वो आनंद देने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। ये है रियल कारण, वास्तव में ये कारण है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से हम अगर इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं भक्त लोग, तो निश्चित रूप से भगवान उनकी संरक्षण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और उनको आनंद देते हैं, आनंद दे देते हैं भगवान, आनंदित करते हैं उनको। तो यही इस श्लोक का एक सार के रूप में मैंने थोड़ा से बताया। हालांकि इसकी व्याख्या बहुत है, क्योंकि इसकी सुंदर व्याख्या है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी है, भगवद्गीता का इम्पोर्टेंट श्लोक भी है ये, और इसकी व्याख्या बहुत लंबी भी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर टीका लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो हम, समय हो गया है तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमको ऐसे, हम अनन्य भक्तों, अनन्य जो भक्त है भगवान के, श्रील प्रभुपाद उनके परंपरा में चलते आ रहे हैं, तो उनके उनके निरीक्षण में रहते हुए यहाँ के जो भी टेंपल के, जो देखिए जो कृपा है ना, ऐसा नहीं कि कृपा जो आता है ना वो किसी न किसी के थ्रू आता है। तो अभी प्रभुपाद जी जो कि हमारे मुख्य आचार्य गुरु है इस्कॉन के, लेकिन एक तो प्रभुपाद जी की संगति हम उनके ग्रंथ से करते हैं, उनकी डायरेक्ट संगति प्राप्त होता है ना, वो संगत कर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका संग प्राप्त होता है, और यही रियल संग है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमको हमारा हमेशा संग करना है ना, तो मेरे बुक्स को पढ़ो, मैं उसमें हमेशा रहता हूँ। और सच में भक्तों, आप पढ़ के देखिए, ये आपको अनुभूति होता है, ये अनुभूति होगा कि हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। जब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद जी का श्लोक और तात्पर्य अनुवाद ये सब पढ़ेंगे ना, तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होती है। मैं एक बताऊँ, एक भक्त है बूढ़ा केश प्रभु, जानते हैं ना बूढ़ा केश प्रभु, वो आज इतने बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े जगहों पे पूना इत्यादि सब लोग बड़े बड़े बुला के उनको सुनते हैं। आपको बताऊँ, वो बूढ़ा केश प्रभु अभी इस्कॉन में थोड़ा एजेड हो गए हैं, लगभग 50 साल हो गया होगा उनका, 45-50 साल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है। वो हमेशा बोलते रहते हैं क्या है, थम्सअप अंगूठा छाप थम्सअप, गए नहीं स्कूल, नहीं गए स्कूल। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, अभी कुछ महीनों पहले 1.5 महीने पहले मैंने वापी में बुलाया था उनको, 3 दिन का सेमिनार किया था, और मैंने टॉपिक रखा था कि आदर्श गृहस्थ जीवन, ये टॉपिक दिया था उनको। क्या लिए वो क्लास, मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल अनबिलीवेबल, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनको मैं पहले से जानता, मीरा रोड में था 10 साल, तो प्रभु जी वहाँ पे काफ़ी सेवा किए, मीरा रोड मंदिर आज उनका देन है, और उन्हीं का देन है कि आज मीरा रोड टेम्पल जो है ना, आज लगभग हजारों कांग्रेगेशन जो है ना पूरी मंदिर को संभाल रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मीरा रोड टेम्पल में जो भगवान का सेवा पूजा करते हैं ड्यूटी में भक्त लोग, टोटल 150 गृहस्थास भक्त सेवा करते हैं, 150 लगे हुए ड्यूटी सेवा पूजा में, एक ब्रह्मचारी है केवल, बाकी सब लोग प्रचार करते हैं, लेकिन सारे गृहस्थ भक्त मिलके मंदिर संभाल रहे हैं। वो एकमात्र देन केवल गुड़ा केश प्रभु का है, सबको लगा के रखा सेवा में। महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आज तक वहाँ पे कोई पैसे देके सेवा करने वालों को नहीं रखा गया, क्योंकि इतने गृहस्थ भक्तों को जोड़ा उन्होंने। तो तो मैंने जब भी उनका 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया ना, पहले भी अटेंड करता था, किया था वो सारा चीज़ें, लेकिन अभी 3 दिन मैं उनके साथ में रहा, उनके साथ में रहा तो उनके पास केवल एक मूल भागवत है, गोरखपुर का मूल भागवत, मूल भागवत रखते हैं, और आचार्यों को कुछ टीका है और टैब के अंदर है, उनके आचार्यों की टीका है। पहले भी ये करते थे, लेकिन मैं इतना रे मुझे ये नहीं हो पाया था, मैं उनको मीरा रोड में था तो उनको प्रिंट निकाल के देता था, वो बोलते थे कि ये निकाल के दे मेरे को प्रिंट, क्लास रखता था मैं, अरेंज करता था तो प्रिंट निकाल के दिया करता था मैं, लेकिन उतना ही मात्र था, वो जो बोले वो कर देता था। लेकिन जब भी मैंने उनका संग किया, 3 दिन उनके साथ में रहा ना, तब पता चला कि दो ही चीज़ रखते हैं, एक टैब में टैब है उनके पास, उसमें आचार्य के टीका है, और दूसरा जो है भागवत, मूल भागवत है, वही लेके बैठते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मूल भागवत लेके बैठते हैं, एक श्लोक बोलते हैं। मैंने ये सब परीक्षा भी ले लिया 3 दिन में, क्योंकि वो थोड़ा एकदम पुत्र स्नेह की तरह थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, बीच बीच में फोन करके बोलते रहते हैं, कुछ डांटते भी चिल्लाते भी है, तो मैंने परीक्षा भी लिया उनका। मैंने वो क्या एक श्लोक को पढ़ेंगे, मैं प्रभुपाद जी का बुक लेके बैठा, प्रभुपाद जी का भागवत, वो मूल भागवत लेके बैठे हैं, मूल भागवत लेके वो बैठे हुए हैं, और मैं प्रभुपाद जी का भागवत लेके एक श्लोक बोला, एक श्लोक बोला, तो वो मूल भागवत को देखकर प्रभुपाद जी ने कैसा शब्दार्थ लिखा, प्रभुपाद जी ने क्या अनुवाद दिया, और प्रभुपाद जी ने क्या तात्पर्य लिखा, पूरा पढ़ के बता देंगे बिना देखे कोई भी भागवत का। विचार करिए, मूल भागवत हाथ में है और प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है वो बता दिए, और मैं कई सारा पलट पलट के सब देख लिया, मैं तो सोचने लगा कैसे हुआ, विचार करे कैसे हुआ, अंगूठा छाप व्यक्ति स्कूल नहीं गया। और सबसे बड़ी बात जो कि हम माथा फोड़ लेते हैं, आपको लगता होगा कि मैं बोला विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका टूका, अरे टीका बहुत पढ़ता है, ऐसा कुछ टीका नहीं पढ़ता हूँ मैं, मेरे को नहीं आता, ऐसा नहीं कि मैं संस्कृत का ज्ञाता हूँ, नहीं आता है, सुना है, थोड़ा बहुत प्रयास है, बस इतना ही है, इतना ही है। लेकिन वो टीका को ऐसा पढ़ते जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं सारे आचार्य, हम तो एक आचार्य का आपका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बताया ना, लेकिन भागवत भगवद गीता के हर एक श्लोकों पे ना कई सारे आचार्यों ने कितना टीका लिखा हुआ है, कई सारे आचार्यों ने टीका लिखा हुआ है, वो सारे टीकाओं को एक हिंदी अनुवाद की तरह ऐसा बताते हो, मैं तो सोच में पड़ा ये आया कहाँ से आया ये कृपा। मैं पूछा जब उनको तो बोले देखो हमने भागवत को, प्रभुपाद जी के भागवत को लेके पढ़ा, बहुत हृदय लगा के पढ़ा प्रभुपाद जी के भागवत को, तो प्रभुपाद जी की रियल कृपा प्राप्त होती है। अगर प्रभुपाद जी ने ऐसे थोड़ी ना बोल के क्या, हम सुनते हैं प्रभुपाद जी बोले हैं कि बुक्स का संग करो मेरा संग होगा, है ना, लेकिन वास्तव में संग होता है, और यही देखिए प्राप्त होता है। और ऐसे अनन्य भक्तों का जब संग प्राप्त होता है ना, तब भगवान भक्त बोलते हैं कि ददामि बुद्धि एवं तम, उसको बुद्धि मैं देता हूँ। जब भगवान जिसको बुद्धि दे देते तो क्या बचा है उसके लिए, क्या बचा बताइए, ददामि बुद्धि योगम थम, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये सारी चर्चा है जो कि हम कही है, अब यही समाप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से हम भगवान की भक्ति करते हैं, आप सब लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हो और सब लोग ऐसे ही जुड़े रहे। आप बहुत सुंदर यहाँ पे आप लोगों को संग प्राप्त है इस ग्रह चैतन्य जीवन प्रभु का, आप लोग उनको मदद करिए, खूब मदद करिए, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा और सेवा इनके थ्रू मिलेगा, उनको मदद करिए खूब। और ध्यान से श्रवण देखिए, मैं पहली बार देखा कि ऐसे श्रोता वहाँ पे भी बहुत सुंदर तरीके से सुन रहे हैं, और बहुत सुंदर सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे सुंदर श्रोता रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत जल्दी मंदिर बन जाता है, एक्चुअली बहुत जल्दी मंदिर बन जाता है, लेकिन जहाँ पे श्रोता नहीं सुनने वाले लोग हैं ना, वहाँ पे जल्दी बनता नहीं है, तो निश्चित रूप से उस जगह का बहुत प्रगति होता है जहाँ पे सुंदर श्रोता रहते हैं श्रवण के, और इसकी महिमा बहुत है। तो सब लोग मदद करिए, जितना हो सके अपने एफर्ट को मंदिर में डालिए, जितना हो सके, तन मन धन सब जितना हो सके उतना डालिए, जितना डालेंगे ना उतना प्राप्त होगा, इस पे विश्वास करिए, इस पे विश्वास करके हम जितना डालेंगे ना उतना प्राप्त होगा हमको, तो डालिए जितना हो सके, मदद करिए, और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाते रहिए, और प्रभुपाद और भक्तों की कृपा प्राप्त करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हरे कृष्णा।
प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद।